यह प्रवचन आदि योग प्रभु के द्वारा निरारो राधा गिरधारी मंदिर में श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद विश्वाध्याय सब विश्वा श्लोक 2 जनवरी 2013
श्लोकों का शब्द अर्थ ऐसे है मेरे पीछे बोलिए चक्रम कृष्ण का चक्र दक्षिण हस्ते दाहिने हाथ में अस्य उसके भरत के पद्मकोश कमल गुच्छों का चिन्ह अस्य उसके पादयों पैरों के तलों पर एजे भगवान की पूजा की महाविषय गण विशाल वैदिक अनुष्ठान द्वारा स को अभिषेक पदोन्नत किया गया अधीरान शासक के सर्वोच्च पदों पर विभूर स्वामी पंच पंचाशत 55 मध्य योग्यों के लिए उपयुक्त गंगायम स्रोत से लेकर गंगा के मुहाने तक बाजी भी घोड़ों से माम देयम दुगमनी को पुरोधाय पुरोहित बनाकर यमुना तट पर अनु क्रमबद्ध भी प्रभु स्वामी महाराज भरत अष्ट सप्तति 78 मध्य स्वान यज्ञ के योग्य घुरां को बबंध बांधा प्रदत्त दान दिया वसुन धन भरतस्य भरत का ही निसंदेह युष्मन्ते महाराज युष्मन्त के पुत्र अग्नि यज्ञ किया साची ने सर्वोत्तम स्थान पर चित स्थापित सहस्रम 1000 बद्धोसम एक बद्ध जो के तुल्य है यस्मिन जिन योग्यों में ब्राह्मणा सारे उपस्थित ब्राह्मण गाय धीरे धीरे अपना अपना भाग प्राप्त किया अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के दर्श श्री प्रभुपाद की दुष्मंत पुत्र महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली में भगवान कृष्ण के चक्र का चिन्ह था और उसके पैरों के तलों में कमल कोश का चिन्ह था। वो महान अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करके सारे विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गया। तब उसने मामदेय अर्थात दुग्मणि के बौरहत्य में गंगा नदी के तट पर गंगा के अंतिम स्थान से लेकर उद्गम तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी तरह यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर उद्गम स्थान तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। उसने सर्वोत्तम स्थान पर यज्ञ की अग्नि स्थापित की और अपनी विशाल संपत्ति ब्राह्मणों में वितरित कर दी। उसने इतनी गाय दान दी कि हजारों ब्राह्मणों में से हर एक को एक बद्ध 1308 को गाय अपने हिस्से में मिली। श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्रील प्रभुपाद की जाते। जैसा कि दस बंदर अग्नि साची गुण अतीत शब्दों से सूचित होता है, दुष्मंत कुमार भरत ने सारे विश्व में विशेषतया भारत भर में गंगा तथा यमुना नदी के किनारों पर अंत से लेकर उद्गम तक अनेक अनुष्ठान किए और ये सारे यज्ञ अत्यंत प्रसिद्ध स्थानों में संपन्न किए गए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञ अर्थात कर्मणा नित्रलोपयम कर्म बंधन, विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कर्म करना चाहिए, अन्यथा ये कर्म मनुष्य को ये संसार में बांध देता है। हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ अग्नि सर्वत्र जलाई जानी चाहिए। इसका अभिप्राय लोगों को सुखी समृद्ध तथा आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर बनाना है। निसंदेह ये सारी बातें कलयुग आने के पूर्व संभव थी, क्योंकि ऐसे यज्ञों को संपन्न करने वाले यज्ञ ब्राह्मण उपलब्ध थे, किंतु वर्तमान समय के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण का आदेश है अश्वमेध ग्वालम्यं संन्यासं वालपेतृकं देवरण स्तुतोपतिं फलो पंच विवर्जिते। इस कलयुग में पांच कार्य की मनाई है, यज्ञ में घोड़ा की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को मांस का तर्पण तथा भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। इस युग में अश्वमेध यज्ञ तथा गोमेध यज्ञ कर पाना असंभव है, क्योंकि न तो पर्याप्त धन है न योग्य ब्राह्मण है। इस श्लोक में मामतेन पुरोद्धाय अर्थात महाराज भरत ने ममता पुत्र भृगुमुनि को इस यज्ञ को संपन्न कराने के भार सौंपा था, किंतु अब ऐसा ब्राह्मण को खोज पाना असंभव है। अतएव शास्त्रों का अनुमोदन है, यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवृत्ति संकीर्तन यज्ञ संपन्न करे। कृष्ण वर्ण दिशा कृष्ण सांग भांगस्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग काफी बुद्धिमान है वो भगवान की पूजा उनके पार्षद सही संकीर्तन यज्ञ संपन्न करके करेंगे। यज्ञ तो संपन्न होने ही चाहिए, अन्यथा लोग पाप कर्म में फंस कर काफी कष्ट भोगेंगे। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने विश्व भर में हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। यह हरे कृष्ण आंदोलन भी यज्ञ है, किंतु इसमें साज सामग्री तथा योग्य ब्राह्मण जुटाने की कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यह सामूहिक कीर्तन कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। यदि किसी तरह लोग एकत्र हो जाएं और उन्हें हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा सके तो यज्ञों का सारा प्रयोजन पूरा हो सकता है। यज्ञ का पहला प्रयोजन है कि प्रचुर वर्षा हो, अन्यथा पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं होगा। अन्नाल भवन्ति भूतानि पर्याणत अन्न संभव। हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं एकमात्र वर्षा से उत्पन्न हो सकती है। कामन भवत्स पर्जन्य और धरती सभी आवश्यकता का मूल स्रोत है। अतएव निष्कर्ष यह है कि इस कलयुग में विश्वभर के लोगों को जीवन के चार पापों से बचना चाहिए। यह है अवैध यौनसंग, मांसाहार, नशा तथा दूत क्रीड़ा। उन्हें शुद्ध अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का सरल यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तब पृथ्वी से जीवन की सारी आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकेगी और सारे लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सुखी होंगे। तब सारी वस्तुएं स्वयमेव व्यवस्थित हो जाएंगे। ओम ज्ञानधीरांध्यस्य ज्ञानांजनासरकरां चक्षुर्विमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति सपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरवैष्णवांसं श्रीरूपां सर्वजातं सगुण रघुनाथनितं तं सजीवं सारिदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगुण ललिता श्रीविशाखानितं। ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದಿನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ರಕ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ಶ್ರೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರೀ ವೃಷಭಾನು ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಂಶಕಲ್ಪತರುಷ್ಟ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದೈಕ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಭಾಗವತಂ ತೇಜೋ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ಮಂತ ಅವರ ಅಂಕೆ ಪುತ್ರ ಸರಿ ಪತ್ನಿ ಶಕುಂತಲ ದಬಡೆ ನೈಷ್ಠಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಕಾಂತಿಕ್ ಭಕ್ತ ಥೆ ನೈ ತೋ ಇತನೆ ಬಡೆ ಭಕ್ತ ಶಕುಂತಲ ಅವರ ಸ್ಮಂತ ಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ತೋ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಚರಿತ್ರ ಸೆ ಪತಾ ಚಲ್ ಜಾತಿ ಯೇ ಬಾತ್ ಅತಿ ಆಸಾನಿ ಸೆ ದುಷ್ಮಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಸೆ ಬಹು ಬಡ ಭಕ್ತ ಥೆ ಆರ ಶಕುಂತಲಾ ಎಸೆ ಕೋಯ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೈ ಥೆ ಬಡ ಉಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಆ ಥಾ ಭೀ ಉನ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಔರ್ ಮೆನ್ಕಾ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಭೀ ಉನ್ಹೋನೆ ಏಕ ತಪಸ್ವಿ ಕೆ ದೇಖ್ ರೇಖ ಮೇ ಬಚ್ಪನ್ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಬಚ್ಪನ್ ಸೆ ಉನ್ಕಾ ಪಾಲಿತ ಪೋಷಿತ ಹುಆ ಥಾ ಕನ್ವ ಮುನಿ ಜೋ ಕಿ ಬಡ ತಪಸ್ವಿ ಹೈ ಸಾ ಸಂತ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಉನ್ಕಾ ದೇಖಭಾಲ ಹುಆ ಥಾ ತೋ ಬಚ್ಪನ್ ಸೆ ಶಕುಂತಲ ಭೀ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಶಕುಂತಲ ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಿಲಾ ಥಾ ಹಮಕೊ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪತಿವ್ರತಾ ಬನ್ ಪಾಯಿ ಪತಿವ್ರತಾ ತಪಸ್ಯಾ ಪತಿವ್ರತಾ ಕಾ ಜೋ ಪುಣ್ಯ ಹೈ ಓ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಭೀ ಹಿಲಾ ದೇತಿ ಹೈ ಪತಿವ್ರತಾ ನಾರಿ ಕಾ ಜೋ ತಪಸ್ಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಪತಿವ್ರತ ತಪಸ್ಯಾ ಸೆ ಜೋ ಪುಣ್ಯ ಇಕಟ್ಠೆ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಎಸೆ ಕೋಯ್ ಸಮರ್ಥ ಶಕ್ತಿ ನೈ ಹೈ ತಾ ಉನ್ಕು ಹುಡ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಆಗಿ ಪತಿವ್ರತಾ ನಾರಿ ಕೆ ಆಗಿ ಕುಚ್ ಕರೆ ಹುಕುಮ್ ದೇ ತೋ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ಈ ದೋನೋ ಸೆ ಏಕ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಿ ಹೈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೋ ಕಿ ಸಾರೆ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಸಾರೆ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಭೀತರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಜೋ ಆಗೆ ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಕರಾಯ ತೋ ಆಜ್ ಕೆ ಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೆ ದ್ವಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ನೆ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಹೈ ಹಮಾರ ಜೀವನ್ ಕೋ ಸಫಲ ಬನಾನೆ ಕಾ ತೋ ಯೇ ಜೋ ಸಂಕೀರ್ತನ ಹೈ ತಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಹೈ ಆಪ್ ಜಾನತೆ ಹೈ ಜಪ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜೆಸೆ ಹಮೇ ಬತಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೀರ್ತನ ಭೀ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಬಹು ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಯೇ ವಿಧಿ ಹೈ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾ ವಿಧಿ ನಹೀ ಯೇ ತಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ ದ್ವಾರ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಮಹಾನಿಧಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬತಾತೆ ಹೈ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಜಬ್ ಹಮೇ ಜಪ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜಪ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಸಮಯ ಏಕ ಭಕ್ತಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ತಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಜೋ ಅಂಗ ಕೆ ಅಂಗ ಹೈ ತಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗೋ ಕೆ ದ್ವಾರ ಜಪ್ ಕರ್ನ ಚಾಹಿ ಈ ತಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಜೋ ಅಂಗ ಹೈ ವೋ ಹೈ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಔರ್ ಸ್ಮರಣ ಜಬ್ ಜಪ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಮಹಾನಿಧಿ ಓರಿನೇಶ್ ಮಹಾನಿಧಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಏಕ ಭಕ್ತಕ್ಕೆ ತಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಅಂಗೋ ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆ ದ್ವಾರ ಜಪ್ ಕರ್ನ ಚಾಹಿ ಪಹಲೆ ತೋ ಸುನ್ನ ಚಾಹಿ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಕೊ ಪ್ರೇಮ ಔರ್ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಭಾವನಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜಪ್ ಕರ್ನ ಚಾಹಿ ಜಬ್ ಹಮೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೋಕರ್ ಕೆ ಜಪ್ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಫಿರ್ ಸ್ವರೂಪ ಜಾಗೃತ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೇರಿ ನಹೀ ಹೋತಿ ಹೈ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೆ ಭೀತರ್ ವೋ ಹಮೇ ಜಾನ್ ಪಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಐಸೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ಔರ್ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಜಬ್ ನಾಮ ಜಪ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ನಾಮ ಇತನೆ ದಯಾ ನಾಮ ಕೆ ನಾಮ ಇತನೆ ದಯಾವಾನ್ ಹೈ ತೋ ನಾಮ ಜಪ್ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ ಹಮಾರೇ ಅಂದರ್ ಕುಚ್ ತ್ರುಟಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಕುಚ್ ಅಪರಾಧ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ जब अपराध होता होता है ना तो वो नाम प्रभु हमें माफ कर देते हैं, किंतु भगवान का जो स्वरूप है वो उनके प्रति जो अपराध होती है वो माफ नहीं करता। तो इससे यहाँ से प्रमाण हो जाता है जो जप करते हैं भगवान के स्वरूप के अपेक्षा भगवान के जो नाम है वो अधिक कृपालु है। हाँ, भगवान जितने दयाशील नहीं है उससे भगवान के स्वरूप से उनके जो नाम है वो अधिक दयाशील है, ऐसे महाराज जी बताते हैं। और खास करके देखा जाए तो मानव जीवन की जो मूल आवश्यकता है भगवत प्रेम प्राप्त करना। और यही बात को पहले समय में जो राजा लोग अधिकारी व्यक्ति होते थे, राजा लोग होते थे, तो जब राजा नहीं समझेगा जीवन के लक्ष्य क्या है तो प्रजा का तोषण नहीं कर सकता, प्रजा को प्रजा को पोष नहीं सकता, प्रजा का प्रजा पालन नहीं कर सकता। तो पहले समय में जो राजा हुआ करते थे बड़े ही धर्म में निपुण थे, अभिज्ञ व्यक्ति थे। हाँ, और महाराज भरत भी यहाँ पर साक्षात प्रमाण है। तो अपने वो सारा संसार को कृष्ण भावना मुखी कराने के लिए, प्रजा को कृष्ण भावना मुखी बनाने के लिए तो पहले एक ही है, राजा बनने के बनने मात्र से ही वो सारा संसार में कृष्ण भावना को प्रचार की। और आत्मा का आवश्यकता क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन रहस्य में भी यही बात को बताते हैं कि भक्तों के पास यदि कुछ निधि है, संपत्ति है, वो है भगवान भगवत प्रेम प्राप्ति का तीव्र लालसा। कृष्ण भक्ति रस भविका मति कुतो क्या है, कुतो अपी यदि कुतो अपी क्रियता उसको खरीद लो। जहाँ पर कृष्ण भक्ति की थोड़ा सा हमें मिलता है तो उनको हमें चाहे हमें कितना बड़ा कीमत चुकाना हो तो उसको हमें खरीद लेना चाहिए, ये बात को बताया जाता है। तो यहाँ पर और एक बात बताया जाता है कि जप करते समय जब एक भक्त जप करता है तो जैसे वो जप करता है और नामों में जैसे उनको भगवत दर्शन होती है, तुरंत तत्क्षण उनके सारे भौतिक इच्छाएं नाश हो जाती है। भगवान का नाम जप करते करते जैसे हमारा सारे पाप नष्ट हो जाती है तो फिर रूप आता है। तब तक रूप नहीं आता है जब पाप नहीं मिटता, भगवान तब तक दर्शन नहीं देते हैं जब तक क्योंकि हमें ग्रहण नहीं करते। जल्दी बार भगवान हमें दर्शन भी देंगे, हम ग्रहण नहीं करते, नहीं समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्रहण इंद्रिय सेवा मुखे ही जुहा दो स्वयं बस पर। जब जुहा भगवान की सेवा में लगेगा, मतलब हरिनाम सेवा में लगेगा, हरिनाम लेते लेते जब इंद्रिय शुद्ध होगा तब शुद्ध इंद्रियों के प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। भगवान की कथा, भगवान की लीला, रूप गुण ये सब प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय नहीं है। जब प्राकृत नाम लेते लेते वो चिन्मय, ये सर्वेंद्रिय जो हमारा सारे इंद्रिय चिन्मय हो जाएगा, आध्यात्मिक दिव्य हो जाएगा, तब दिव्य इंद्रियों के द्वारा हमें मतलब जीवा इंद्रिय, खास करके जीवा इंद्रिय जब भगवान का नाम लेते लेते शुद्ध हो जाएगा तब जाके हमें भगवान का रूप को दर्शन कर पाएंगे। कि नाम लेते रूप ऐसे संगे संगे, जैसे हमें नाम लेते हैं ना तो रूप भी उसके नाम के पीछे पीछे आता है। हाँ, तो हमें भगवान का भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो ये मामले में एक बार श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बता रहे थे कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अपने नाम जब को असफल मानते थे जब नामों में भगवान का मनोरम दृश्य, मनोरम रूप का दर्शन नहीं होता था। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अपने जप को असफल मानते थे जब भगवान का रूप को उनके नाम लेते समय दर्शन नहीं कर पाते थे। और जब वो जप करते थे, जब भगवान का रूप का दर्शन नहीं होता था तो क्या करते थे, अपनी गंगा में फेंक देते थे। और तब तक और ऐसे वो गले तक पानी में घुस जाते थे, चले जाते थे। और तब तक वो वहां से नहीं निकलते थे जब तक उनका नाम के साथ साथ भगवान के स्वरूप का स्मृति उदित नहीं होता था, तब तक वो पानी में रहते थे। एक बार एक ब्रज में एक माता जी गोपी दूसरे गोपी को कह रही थी कि देखो यदि संसार में अपने बच्चे, अपने पति या पारिवारिक सुख या भौतिक आनंद कुछ लेना लेने की मन में है, तो फिर गलती से भी भूल से भी ये कृष्ण की ओर रूप की ओर नजर नहीं हाँको मत, नहीं हाँकना। मतलब कहने का अर्थ यह है, एक बार भगवान के स्वरूप का दर्शन, रूप का दर्शन होने के बाद फिर ये निरर्थक भौतिक आनंद को तत्क्षणात हम भूल जाते हैं। ये भौतिक जो आनंद है तो हमें तुरंत भगवान के दर्शन के बाद भूल जाते हैं। तो कहने का अर्थ प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में ये बताना चाहते हैं कि आत्मचेतना में सिद्ध बनने का कलयुग में प्रमुख उपाय हियरिंग चेंटिंग वेरी पावरफुल प्रोसेस इन दिस कलयुग, भगवान के नाम के श्रवण करना और कीर्तन करना, यही बस सारे शास्त्रों में एक साथ आवाज देते हैं। सारे शास्त्र मिल करके एक साथ कह रहे हैं कि आत्मचेतना में, आत्मचेतना में चेतना तो है अभी भौतिक चेतना में, लेकिन आत्मचेतना में सिद्ध बनने के लिए श्रवण और फिर भगवान के नाम का कीर्तन प्रमुख मार्ग उपाय है। इसलिए प्रभुपाद जी स्वयं ये कार्य करके दिखाया, अंतिम मुहूर्त तक उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का कीर्तन मुंह में कीर्तन किया, प्रभुपाद जी दिखाया। खास करके ये वैष्णव को, ये भक्त को भगवान का महिमा प्रचार करते समय अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति किए है, प्रचार करते समय भक्त को क्रोधाभिभूत क्रोधित नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह है गुरु मंत्र। और जब एक भक्त जप करता, भगवान का नाम हम जप करते हैं, बड़े विनम्र चीज से जप करना चाहिए, लेना चाहिए। और कुछ उपाय भी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बताते हैं कि भक्त को जप करते समय सड़क के घास से भी अपने को नीचा समझना चाहिए, दूसरी वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए, तीसरी झूठी प्रतिष्ठा से रहित होनी चाहिए, और चौथी यह है कि दूसरों को सदा समस्त प्रकार आदर सम्मान देने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। एक भक्त इस प्रकार मनोस्थिति से जब होता है तब जाके अखंड भगवान का महिमा का कीर्तन वो निरंतर कर सकता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये फर्मूला बताते हैं, भगवान का गुण कीर्तन अखंड रूप से किसी को करने की लोभ है, इच्छा है, तो ये फर्मूला को निश्चित रूप से अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। और जब तक हमें अपराध रहित नहीं होते हैं तब तक शुद्ध नाम जब नहीं हमारे जीवन में उच्चारित नहीं हो सकता। जैव धर्म में बताते हैं, जैव धर्म बताते हैं कि जब तक एक भक्त संपूर्ण रूप से अपराध रहित नहीं होता तब तक उनका जीवा में शुद्ध नाम नृत्य नहीं करता। नाम प्रभु उनके जीवा में वो जो नाम शक्ति को, नाम में जो शक्ति होती है उस शक्ति को प्रकट नहीं कराते। वहां पर ये बात को बताया जाता है। और खास करके एक वैष्णव भगवत भक्त को प्रचार करते समय अनेक विरोधी तत्वों का भी सामना करना पड़ता है। हम जब जाते हैं तो अलग संप्रदाय वाले जब हमारे सामने आ जाते हैं तो उनके संप्रदाय का जो फिलोसफी है, दर्शन को स्थापित करते हैं। पूरा पूरा यदि वैष्णव संप्रदाय का जो तत्व है यदि हमें इसमें पूरा तरह कन्विंस नहीं है तो झुक जाएंगे उनके दर्शन के समय में। झुक जाएंगे। इसलिए जब हमें बाहर जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं तो उनके बातें को हमारे सामने रखते हैं। वो समय जब रखते हैं वो समय हमें बड़े क्रोधित होकर के ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप आपका दर्शन तो ऐसा गलत है, ऐसे 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 नहीं कहना चाहिए, क्रोधित नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बड़े ही शांत रूप, क्योंकि बद्धदेव का एक बहुत बड़ा खूबी है वो सहज क्रोधित हो जाता है, खास करके भक्तों की हरे कृष्ण वाले को देख करके, हरे कृष्ण वाले को देख करके वो चिढ़ते हैं। जो लोग अभक्त हैं उनको उनके सामने जाके कुछ बताओ वो बड़े बड़े चिढ़ते हैं। तो वो समय एक भक्त को बड़े शांत भाव से उनका जवाब देना चाहिए, चाहे कोई भी होना चाहिए, भले हमको लगता है अंदर से तो बहुत आघात होती है कि गुरु वैष्णव की निंदा होती है, कृष्ण का निंदा होती है तो बहुत लगता है, लेकिन अपने कृष्ण को सामने प्रस्तुत करने के लिए वहां पर उनको बड़े ही सहनशील बनना चाहिए। बन करके उनको अपने दर्शन में कहना चाहिए। क्योंकि बद्ध जीव भक्ति के विषय में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध नहीं है, इतना आग्रही नहीं है, भक्ति के विषय में सुनने के लिए तैयार नहीं है, यही उसका रोग है। और इसीलिए भक्तों को बड़े ही सावधानी से अपने दर्शन को बातें को वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। खासकर कलयुग में दिखा जाता है, कलयुग में, कलयुग में देखा जाता है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को जंगली जानवर तक, जानवर भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कलयुग के मनुष्य नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण मंत्र जो अपने संस्थान ये जो रखा तो जंगली जानवर ले लिए, लेकिन वर्तमान के मनुष्य वो चीज़ को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में संन्यास लिया के समय रह रहे थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए कुछ भक्त जाते थे। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए भक्त लोग जाया करते थे और चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे शिवानंद से, तो चैतन्य महाप्रभु को जो मिलने के लिए जाते जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ हो गया और शिवानंद सेन वो कुत्ता को भी छोड़े नहीं, क्योंकि हाँ जो होते हैं भक्त होते हैं वैसे कि वो जंतु जानवर का उद्धार भी कल्याण भी चाहते हैं। हाँ तो कुत्ता शिवानंद सेन के साथ हो गया और वो कुत्ता को लेकर के चले। हाँ और जहाँ पर रुकना था शिवानंद सेन को वहाँ पर जाकर रुके और उनके असिस्टेंट को कुत्ता का दायित्व देकर वो कुछ बाहर के काम में निकल पड़े और वो बाहर से आते आते उनको बहुत विलंब हो गया था। जब आके देखें कि उनके कुत्ता घर पे नहीं और उनके असिस्टेंट को पूछें क्या कुत्ता का देखभाल किया था तो उन्होंने बताया नहीं, मैं तो उनको ध्यान नहीं दिया। तो वो रात को शिवानंद सेन कुत्ता को ढूंढे लेकिन कुत्ता नहीं मिला और शिवानंद सेन कुत्ता का दुख में भी दुखी होकर के वो रात को उपवास किए और सुबह होते ही शिवानंद सेन जगन्नाथ मंदिर को चल दिए। जब चल दिए देखें कि चैतन्य महाप्रभु वो कुत्ता को एक नारियल तोड़ करके दे रहे हैं, तोड़ के खिला रहे हैं और कुत्ता नारियल भी खा रहा है। हाँ चैतन्य महाप्रभु के हाथ से वो निर्माल्य खा रहा है, नारियल निर्माल्य खा रहा है और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हाँ हरे कृष्ण मंत्र गाओ, तो कुत्ता अपने दो पैर को दो पैर को ऊपर करके हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है। ये बातें सारे शिवानंद सेन खड़े खड़े देख रहे हैं और तुरंत जैसे ही कुत्ता हरे कृष्ण मंत्र गाया तुरंत वैकुंठ से एक विमान आया और अपने ये कुत्ता शरीर को छोड़ करके वहां पर बैठ करके भगवान का धाम चले गए। तो ये प्रसंग से भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक संदेश प्रदान करना चाहते हैं। कलयुग में हरे कृष्ण गाने से यदि जानवरों का कुत्तों का उद्धार हो जाता है तो मनुष्य का क्यों नहीं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं जीव जागो कब तक ही भौतिक चेतना में गिरे रहोगे। हाँ इसीलिए मैं एक बहुत बड़ा कीमती चीज लेकर के आया हूँ, आप ले लो। तो यहाँ पर प्रश्न होता है यदि आप इतने बड़े कीमती चीज लेकर के आए हो तो क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर कहते हैं कि जब मांगोगे तभी मैं दूंगा। हाँ जब मांगोगे हाँ मैं तभी जाके दूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये बात को सुनकर के चैतन्य महाप्रभु को मांग लिया। हाँ तो खास करके देखा जाता है प्रभुपाद जी आज की तात्पर्य में भी ये बात बताते हैं कि कलयुग में लोग इतने मांसाहार करना या स्त्री संग में या नशा जुआ ये सब कार्यों में बड़े अभ्यस्त है और प्रभुपाद जी संकीर्तन आंदोलन के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे मांसाहार नशा जुआ उससे बीच से निकाले केवल संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। और प्रभुपाद जी जब सुमति मुरारी जी के पास जाकर भिक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और सुमति मुरारी जी को प्रभुपाद जी कह रहे थे थोड़ा सा मदद दे दीजिए, हाँ थोड़ा सा मदद कर दीजिए, आपका हेल्प चाहिए। हाँ जब इस तरह कह रहे थे तो सुमति मुरारी जी कह रहे थे नहीं, आप तो 70 साल के हो, ये तो हनुमान का काम है। हाँ आप मृक्षों के नगरी में जाकर के क्या कर पाओगे। हाँ लेकिन प्रभुपाद जी नहीं सुने, प्रभुपाद जी गए और जाकर के अमेरिका का भौतिक जीवन में एक प्रकार का आग लगा दिया, जो आपके द्वारा भौतिक अमेरिका का भौतिक जीवन जल करके छारखार हो गया। केवल प्रभुपाद जी जो अमेरिका में जाकर ये संकीर्तन आग को लगा ये बात नहीं, सारा पृथ्वी में वो आग को लगा दिया। हाँ चैतन्य महाप्रभु ये संकीर्तन आग नदिया में लगाए थे और काजी को उद्धार किए थे, किंतु प्रभुपाद जी ने पता नहीं ये आग को सारा विश्व में लगा करके कितने काजियों के साथ साथ कितने पाजियों को भी उद्धार कर दिया। ये प्रभुपाद जी का भगवान चैतन्य महाप्रभु का सोल्जर का एक विशेष क्रेडिट है, विशेष अवकात है। हाँ, भगवान का ये एक बहुत बड़ा अपने भक्तों को क्वालिफिकेशन दे के रखे हैं, अपने से भी हाँ भगवान अपने भक्तों को बड़ा बना देते हैं। यदिओ भगवान श्री राम सेतु बांधने के लिए समर्थ थे, बांधने के लिए समर्थ थे, लंका जाने के लिए समर्थ थे, फिर हनुमान जी को वो चुने। ये भगवान का एक विशेष गुण है। हाँ, और प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे शिल्पपति उद्योगपति ऐसे ऐसे लोगों के हृदय के भीतर जो रावण बैठा था, केवल संकीर्तन अस्त्रों के द्वारा वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के हृदय में बैठा हुआ रावण का वध किया। हाँ, और फोड़ जैसे कंपनी को ला करके राधा माधव जी के मंदिर निर्माण कार्य में सेवा में लगा दिया। ये प्रभुपाद जी का विशेष गुण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आवाज की है कि जाओ जाओ नित्यानंद, जाओ हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाया करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजे कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हे नित्यानंद, हे हरिदास, आप जाओ घर हर घर के दरवाजा में पहुंचो और उनकी विनती करो, बोलो राम हर कृष्ण। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश था। और प्रत्येक स्कंद के हरे कृष्ण हरे राम जो आंदोलन है, स्कंद संप्रदाय के भक्तों को एक प्रकार उत्तरदायित्व चैतन्य महाप्रभु ने दे रखे हैं। अपने शक्ति के हिसाब से निश्चित रूप से हाँ ये दायित्व को अपने ऊपर लेना चाहिए और उनको करना भी चाहिए। और कलयुग में राक्षस प्रवृत्ति जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक बात मैं भूल रहा हूँ कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जब अपने गृहस्थ लीला में थे, वो समय एक बार वो बैठ करके गोपी 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 ऐसे ऐसे कह रहे थे। जब गोपी गोपी कह रहे थे तो उनके भी स्टूडेंट आके, उनके भी छात्र आके बोला, क्या ये गोपी गोपी लगा रखे हो, अरे कृष्ण कृष्ण बोलो फिर सुप्रीति प्राप्त करोगे, ये गोपी गोपी कहने से क्या मिलने वाला है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सुने कि ये मुझे सिखा दे रहा है, तुरंत एक डंडा लिए और वो छात्र के पीछे मारने के लिए उनको दौड़े। और जैसे दौड़े वो छात्र जो था वो अपने प्राण को बचाने के लिए तो वो भी जोर से भागा। और भाग करके और दूसरे छात्र जहाँ पर रोके हुए थे वहाँ पर जाके पहुँच गया। और पहुँच करके जाकर के सारे घटना को बता दिया कि देखो निमाय पंडित का क्या हरकतें, ये निमाय पंडित अपने आप को क्या समझ रखा है, तो आए तो देखिए हम सब मिल करके उनको एक सबक सिखाएंगे। तो इस प्रकार सारे छात्रों ने मिलकर एकजुट होकर तो इस प्रकार का वर्तवा करने लगे, बातें करने लगे। तो ये बातें चैतन्य महाप्रभु के कान में पहुंचा। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ये बात को सुने तो तुरंत उन्होंने वो बहुत दुखी हो गए। अरे मैं आया था जगत का उद्धार करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ वो मेरे प्रति अपराध करके और अपने जीवन को नारकीय बना रहे, नरक ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ये आश्रम बदलना पड़ेगा। तुरंत चैतन्य महाप्रभु क्या किए, अपने नवविवाहित पत्नी और वृद्धा माँ को छोड़कर संन्यास लेकर के संकीर्तन आंदोलन के द्वारा सारा संसार को उद्धार किया। देखते हैं, हमें अभी देखते हैं कि कलयुग में राक्षस प्रवृत्ति धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ जा रही है, तो कभी कभी डर होती है क्या ये आग बुझ जाने वाली है, कि ये संकीर्तन जो आग लगी है प्रभुपाद जी ने लगाया, क्या ये आग बुझ जाएगी। तो वह समय भक्तों को भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार काजी ने संकीर्तन आंदोलन को रोका था और भगवान चैतन्य महाप्रभु नरसिंह के रूप में जाकर उनका छाती को बिदाड़ दिए थे, ठीक उसी प्रकार हमको यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अभी बुझने वाली है, ये आग अभी बुझने वाली है, तुरंत भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करना चाहिए, वो सही सही ठिकाना कर देंगे। तो ये बात की भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज भी भविष्यवाणी किए थे। जो दिन कोर्ट कचहरी में गीता भागवत की कीर्तन होगी, हम समझेंगे कि लोगों का हृदय बदला हुआ है। आज भी कोर्ट कचहरी में भगवत गीता को रख करके कुछ बातें कहते हैं। तो यही बात को देखकर भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बताए थे कि जो दिन कोर्ट कचहरी में भक्ति गीता भागवत की चर्चा कीर्तन होगी, हम समझेंगे कि लोगों का हृदय बदला है। और हरे कृष्ण मंत्र ऐसे एक मंत्र है, आप उसको कैसे भी जपो वो फल प्रदान करेगा। लेकिन और कोई मंत्र आप उल्टा जपोगे कि उसको सही रूप से नहीं जपोगे तो आपको बैड रिएक्शन होगा, उनका खराब परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ऐसे एक मंत्र है, आप कैसे भी जपो वो लाभ देने वाले ही है। उदाहरण आप जानते हैं वाल्मीकि, हाँ वो उल्टा जप करके मरा मरा कह करके भी वो सुधर गया, उनका उद्धार भी हो गया। ये मार्ग में अल्प किया हुआ भक्ति ना व्यक्ति को अति घातक से घातक स्थिति से बचा सकता है। कलि युग में हम देखते हैं लोगों का बुद्धि बड़े कम है, उनका स्मरण शक्ति भी कम है, लोग बड़े हतभाग हैं। प्रायण अल्पायुष कलयस्मिन् युगे जना बंध सुबंध मदे बंध भाग्ये उपद्रता। कलि युग में ऐसे स्थिति में भगवान ने यही हरे कृष्ण मंत्र को ही चुने उधार होने का। और श्रीमद् भागवतम में भी ये बात बताया जाता है, ये मंत्र को कैसे भी लो ना, सांकेत्य पारिहास स्तोवन हेलनम ऐसे वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगंहरम, आप किसी भी प्रकार लो, ये वैकुंठ का जो नाम है ये आपको पापों से मुक्त कराएगा। जैसे कि अजामी संकेत, अपने पुत्र को संकेत दृष्टि से उच्चारण किया तो उनका उद्धार हुआ। और कभी कभी देखते हैं लोग हमें जब जाते हैं लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, हाँ हरे कृष्ण वाले ये ऐसे ऐसे कहते हैं, हंसते हैं। उसी दृष्टि से भी किसी कोई ने कोई यदि उच्चारण करता है तो उसका भी उधार हो जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में लौटे और नवद्वीप में हरे कृष्ण ना संकीर्तन निकाले, तो उस समय जब जा रहे थे संकीर्तन पार्टी जा रही थी, तो उस समय मुसलमान काजी अपने प्यादा को पठा भेजा भेज करके बोला बंद करो उसको। और काजी ने प्यादा आकर के बोला देखो प्यादा आकर के बोला काजी का आदेश है तो उसको बंद करो, नहीं तो तुम सारे लोगों को बंदी बनाया जाएगा, क्या ये हरी हरी लगा रखे हो, बंद करो ये सब। तो जैसे ही काजी मुस्लिम होकर के जैसे ही हरे कृष्ण हरी हरी बोलने लगा तो चैतन्य महाप्रभु कृपा उनके ऊपर हो गया, उनके जुहा काजी के जुहा में हरिनाम प्रभु जाकर के बैठ गया, हरिनाम जाके बैठ गया। और उसी मोड चैतन्य महाप्रभु कृपा होने मात्र से वो काजी वो मुस्लिम जो था वो हरी 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 तुरंत उच्चारण करने लगा। और ये हरी हरी बोलते बोलते वो काजी के पास गया, और काजी के पास जब पहुंचा उनका जीवा हरी हरी बोल रहा था, तो ये काजी बड़े ही बिगड़ अवस्था में गिर गए। अरे मैं उसको भेजा था ये हरी हरी बंद करने के लिए और स्वयं बोल बोल के मेरे पास आ रहा है, अरे मैं तुमको भेजा था ये हरी हरी बंद करने के लिए, अब तुम खुद बोल बोल के यहाँ पर आए हो तो क्या है। तो वहाँ पर काजी ना प्यादा बोलता है मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पर जाकर के लोगों को बोला ये हरी हरी बंद करो नहीं तो आपके द्वारा बंदी बनाया जाएगा। और जैसे मैं हरी हरी बोला तो उसी समय से मेरा ये जीवा हरी हरी बोलते रहता है, मैं कितना भी प्रयास करता हूँ हरी हरी रुक जाओ ये रुकता नहीं है। तो ये नामाभास, हाँ भले मुसलमान है लेकिन जैसे ऐसे ऐसे पतित अवस्था में है, जैसे भगवान का नाम लिया तुरंत चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ। और जैसे चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ इतने पतित अवस्था में होते हुए भी वो हरिनाम को छोड़ नहीं पाया। हाँ ये है परिहास, परिहास में किया लेकिन नामाभास भगवान का नाम उनके ऊपर लागू हो गया, फल जो है उनको प्राप्त हुआ। ऐसे और देखते हैं कभी कभी हमें ड्रामा करते हैं, हाँ तो ड्रामा के समय कोई नारद बन जाता है, असल में नारद नहीं है लेकिन नारद बन करे कभी नारायण नारायण ऐसे उच्चार बोलता रहता है। जैसे बोलता रहता है वो नारायण वो एक्टिंग में बोलता है, सच में नहीं, तो एक्टिंग में बोलते बोलते उसको भी वो नामाभास स्थिति में वो व्यक्ति को पहुंचाता है। और चौथी ये है कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहुंचे पाश्चात्य देश में, तो उस समय देखे तो ये लोग इतने पाप कर चुके हैं तो वो लोग अपने जीवन में भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी क्या किए, आदेश दिए कीर्तन करो। प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी बोल दिए कीर्तन करो। तो जितने सारे लोग थे हिप्पी लोग तो कैसे उच्चारण किए, ह रे कृष्ण ऐसे उच्चारण किए, पूरा नहीं बोल पाए, ऐसे ऐसे छोड़ छोड़ के। गुरु गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि ऐसे बोले ह रे कृष्ण ह रे कृष्ण ऐसे बोले, ऐसे ऐसे बोलते बोलते हर प्रभुपाद जी भी उनके पास बैठ करके जप कर रहे थे। और एक शुद्ध भक्तों का शब्द ध्वनि जो तरंग है हिप्पियों के कान में जो पहुंचा तो उनके अंदर को साफ किया। और ऐसे ऐसे खंडित तोड़े टूटे टूटे भगवान का नाम टूटा हुआ अवस्था में बोलते बोलते तो वो लोगों को भी ये अवस्था नामाभास अवस्था प्राप्त हुआ। आज ये नामाभास स्थिति से वो लोग आज शुद्ध भक्त बन करके आज सारा संसार को उद्धार कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चला हुआ संकीर्तन मोमेंट का रिजल्ट है, फल है। और उसको यदि हमें गंभीर के साथ लेंगे तो हमारा भी स्थिति प्राप्त होगा, स्थिति प्राप्त होगा आगे चलकर पीछे जो हमें देखते हैं कि सारे भक्तों के जीवन में। तो कहने का अर्थ ये है, भरत महाराज लोगों की शुद्धिकरण के लिए भगवत धाम पहुंचाने, क्योंकि राजा थे, अधिकारी व्यक्ति थे, और जो राजा होता है, अधिकारी व्यक्ति होता है, तो उनके बड़े जिम्मेदार बनता है सारे प्रजा का ऐसे देखभाल हो जाए तो जीवन को लक्ष्य समझे, बद्ध जीव अपने जीवन को लक्ष्य को पहचाने और अंतिम गंतव्य में वो अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर ले। तो ये उद्देश्य को रख करके भरत महाराज अपने जीवन को भक्ति में लगाए और साथ साथ भी सारा संसार भर उन्होंने कृष्ण भावनामृत जो भावनामृत को लोगों के भीतर उद्रेक कराए। तो ये उद्देश्य को रख करके यदि हमें चलेंगे, ये उद्देश्य को रख करके यदि हमें चलेंगे तो समय अनुसार हमें सिद्धि प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन किसी का? यस रोहित, यस यस। लेकिन सारे झूठ बोलता है। गीता चुने के बाद भी वो झूठ बोलता है, वो समय जज भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कलिजुग है, कलिजुग में धर्म के प्रति किसी का विश्वास नहीं है, ना जज का। जज भक्त होता वो ठग सकता है, ये झूठ बोल रहा है कि क्योंकि जो भगवान के भक्त होता है तो सामने वाला के भीतर क्या चलती है वो अनुभव कर लेता है, वो जान लेता है, क्योंकि भक्ति का बल है इतने ऐसा एक बल है। तो वो बल के द्वारा भक्त को मालूम हो जाता है कि ये सही बोल रहा है या झूठ। जज अधिकारी व्यक्ति जब इस प्रकार का पति की अवस्था में, तो फिर गिरा हुआ व्यक्ति के भीतर कैसे संस्कार लाएगा, तो गिरा हुआ व्यक्ति कैसे पहचानेगा। तो असली तो दोष है कि ऊपर से कलिजुग है, कलिजुग में सर सारे चोर चंडाल ये बड़े बड़े स्थान में बैठेंगे। श्रीमद् भागवतम बताया जाता है कि सारे जो चोरों उत्कोच लोग हैं ना, ऐसे ऐसे स्थान में जाएंगे। और जब ऐसे ऐसे स्थान में ये लोग जाएंगे, जथा राजा तथा प्रजा, प्रजा का कुछ गलती नहीं है। इसीलिए भागवतम डिक्लेरेशन करता है, जब तक एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये अधिकारी स्थान नहीं लेना चाहिए, चाहे वो जो जज हो या पिता माता हो, गुरु हो कि राजा हो, व्हाटएवर कोई भी हो, जब तक वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बन जाता तब तक महत्वपूर्ण स्थान को नहीं लेना चाहिए। तो वो तो अपने जीवन को नरक ले जाएगा, आश्रितों को भी धक्का मार देगा। यस ब्रो। और एनी क्वेश्चन किसका? और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? हाँ यस ब्रो। क्या ये श्लोक, क्या ये बातें, क्या ये? नहीं, ये है ना, एक है गुरु चला जैसा चला ऐसा गुरु, नरक में ठला ठला। तो कलयुग में यही हो रहा है। हाँ, ढोंगी गुरु लालची चला, नरक में ठला ठला, आपका जवाब यही है। तो कलयुग में यही कलयुग है, ये कलयुग का लक्षण है। एक सच्चे गुरु प्राप्त होना ये अनेक तपस्या की पूंजी है। जिनको भी सच्चे संत मिला है, सच्चे गुरु मिलता है, ध्रुव महाराज को धरती, यदि हम हमारे हृदय की चेतना, हमारे हृदय की भावना किस प्रकार है, यदि कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण प्राप्ति के असल इच्छा है, तो आपको सही गुरु मिलेंगे, जैसे ध्रुव महाराज को मिले नारद मुनि। ठीक उसी प्रकार हमारा उद्देश्य यदि कृष्ण प्राप्ति, तो कृष्ण हमारे सामने एक सही गुरु ले देंगे। यदि ऐसे और किधर है, तो फिर ऐसे ढोंगी गुरु को आपके भेज देंगे आपके पास, तो दोनों नारद जाएंगे। सही गुरु प्रभुपाद जी बताते हैं यदि शास्त्र के विधान को सही 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 रूप में एक भगवान का भक्त पालन करता है तो गुरु बनने का योग्य होता है। सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात्। हाँ, यदि वैष्णव नहीं है, सत्कर्म मंत्र तंत्र एकदम विशारद निपुण है, मंत्र तंत्र में निपुण है, लेकिन वैष्णव नहीं है तो हाँ तो गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं, वो गुरु के योग्य नहीं है। वैष्णव बने बिना कोई गुरु नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे, हाँ हमारा आज्ञा, मेरा आज्ञा मुझे मानते हो तब आप गुरु बन सकते हो, किधर भी जाकर बता सकते हो। ओके, एनी कमेंट्स और कुछ किसी को कहना? धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। गोविंदानंदे Thank you.